श्रीमद् भागवतम के सातवें अध्याय पर चर्चा है, सातवें स्कंद के सातवें अध्याय पर इसके महत्वपूर्ण श्लोक को पढ़ेंगे। एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः एकांत भक्ति गोविंदे यत् सर्वत्र तदीक्षणम्। एतवान इतना एव निश्चय ही लोकेस्मिन् इस भौतिक जगत में पुंसः जीव का स्व अर्थ असली हित परः दिव्य स्मृतः माना जाने वाला एकांत भक्ति अनन्य भक्ति गोविंदे गोविंद के प्रति यत् जो सर्वत्र सभी तरह तद ईक्षणम् गोविंद या कृष्ण के संबंध को देखना। अनुवाद और तात्पर्य इसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इस भौतिक जगत में समस्त कारणों के कारण गोविंद के चरण कमलों के प्रति सेवा और सर्वत्र उनका दर्शन करना ही एकमात्र जीवन का लक्ष्य है, जैसा कि समस्त शास्त्रों में बतलाया गया है। मनुष्य जीवन का चरम लक्ष्य इतना ही है। तात्पर्य इस श्लोक में आगत सर्वत्र तदीक्षणम शब्द भक्ति की चरम सिद्धि को बताते हैं, जिसमें प्रत्येक वस्तु गोविंद के कार्यकलापों से संबद्ध दिखती है। अतएव उच्च भक्त या महाभागवत कभी भी किसी वस्तु को गोविंद से असंबद्ध नहीं देखता। स्थावर जंगम देखे ना देखे तारा मूर्ति सर्वत्र हय निज इष्ट देव स्फूर्ति। महाभागवत प्रत्येक चल तथा अचल वस्तु को देखता है, लेकिन वह उनके रूपों को ठीक उस तरह नहीं देखता। प्रत्युत वह जहां कहीं भी देखता है वहीं उसे परमेश्वर का रूप प्रकट दिखता है। चैतन्य चरितामृत मध्य लीला। यहां तक कि इस जगत में भी भक्त भौतिक रूप से प्रकट होने वाली वस्तुओं को नहीं देखता, इसके बदले में वह हर वस्तु में गोविंद के दर्शन करता है। जब कोई भक्त किसी वृक्ष या मनुष्य को देखता है तो वह उन्हें गोविंद से संबंधित देखता है। गोविंद मादि पुरुषम, गोविंद प्रत्येक वस्तु के आदि स्त्रोत्र हैं। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। गोविंद कहलाने वाले कृष्ण परम नियंता हैं, सच्चिदानंद रूप हैं, वे सबों के उद्गम हैं, उनका कोई अन्य उद्गम नहीं है, क्योंकि वे समस्त कारणों के कारण हैं। ब्रह्म संहिता। एक पूर्ण भक्त की पहचान यही है कि वह इस ब्रह्मांड में गोविंद के सर्वत्र दर्शन करता है, यहां तक कि एक परमाणु में भी। अंडांतरस्थम परमाणु अचिंतरस्थम, भक्ति की यही पूर्ण दृष्टि है। इसीलिए कहा गया है, नारायणम धीरः पश्यन्ति परमार्थिनः जगत धनमयम लुब्धः कामुकः कामनीमयम्। भक्त हरेक को नारायण से संबंधित देखता है। नारायणम, प्रत्येक वस्तु नारायण की शक्ति का विस्तार है। जिस प्रकार लोभी को प्रत्येक वस्तु कमाई का साधन प्रतीत होती है, जिस प्रकार कामी को सारी वस्तु काम के लिए अनुकूल लगती हैं, उसी तरह परम पूर्ण भक्त प्रहलाद महाराज ने एक पत्थर के खंभे के भीतर भी नारायण को देखा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि हम किसी भ्रष्ट व्यक्ति द्वारा गढ़े गए दरिद्र नारायण शब्द को स्वीकार करें। वास्तव में जो नारायण का सर्वत्र दर्शन करता है वह दरिद्र तथा धनी में कोई अंतर नहीं करता। दरिद्र नारायण को चुनना और धनी नारायण का परित्याग भक्त की यह दृष्टि नहीं होती, प्रत्युत यह भौतिकवादी व्यक्तियों की अपूर्ण दृष्टि है। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद के अंतर्गत प्रहलाद ने गर्भ में क्या सीखा नामक सातवें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्री गुरौ श्वेतपदकमलं श्री गुरुन् वैष्णवांश्च श्री रूपं सागरजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम
सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तो दिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेम वर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते मदेकबंधु मत्संगे मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते असाधु साधु तदाई अतीनीच चतः कर हानमंच कदाचिन्मा प्रेमनारत्कंठयोसुरा।
हरे कृष्ण। पिछली बार इस अध्याय को पूरा नहीं कर पाए थे समय की कमी के कारण, आज इसको आगे बढ़ाएंगे। तो हम लोग सुन चुके हैं इस अध्याय में कि कैसे प्रहलाद महाराज ने बताया कि नारद मुनि से कैसे उन्होंने सुना। पिछले अध्याय में प्रश्न किया था उनके मित्रों ने कि अरे तुम तो हमारे साथ रहते हो, महल में रहते हो, कब सुना? तो प्रहलाद महाराज ने बताया कि कैसे माँ के गर्भ में रहते हुए उन्होंने नारद मुनि से ये सुना। और फिर उन्होंने आगे बतलाया कि कैसे ये जो भौतिक जगत है इसमें हम कैसे अपना समय बर्बाद करते हैं, कुछ वर्ष सोने में, कुछ वर्ष खेलने में, कुछ वर्ष अन्य कार्यों में। तो ऐसे फिर बताकर वो भगवान की भक्ति का गुणगान करने लगे कि हमें भगवान की भक्ति करनी चाहिए। तो अब जिस भाग को हम लोग पूरा नहीं कर पाए थे, प्रहलाद महाराज अब अपने मित्रों को बता रहे हैं कि मुक्ति का क्या मार्ग है। वो कहते हैं कि मुक्ति के बहुत से मार्ग हैं, लोग कहते हैं, लेकिन उनमें सर्वश्रेष्ठ मार्ग वो है जो भगवान ने बताया। ये महत्वपूर्ण बात प्रहलाद महाराज कहते हैं। अर्थात जब हम भक्ति भी करना चाहें तो भक्ति या धर्म का पालन हमें तब करना चाहिए जैसे भगवान बताते हैं, उस तरह से करना चाहिए। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। प्रभुपाद अपने कई प्रवचनों में ये समझाते हैं कि हम धर्म को बना नहीं सकते, धर्म को बनाया नहीं जाता है। किसी भी प्रकार चाहे कोई साधु हो, कोई आचार्य हो, वो धर्म को नहीं बनाते हैं, धर्म भगवान बनाते हैं। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। और साधु क्या करते हैं? उसी धर्म का प्रचार करते हैं। इसीलिए भगवान जब भगवत गीता कहते हैं तो प्रभुपाद कहते हैं हमें एज इट इज जैसा है वैसा सबको बताना है, बस ये सच्चा प्रचार है। क्योंकि हमें धर्म बनाने की आवश्यकता नहीं है, ना ही हमारे अंदर क्षमता है कि हम धर्म बना सकें। कैसे कोई धर्म बना सकता है? जिस व्यक्ति ने, जिस धर्म परम पुरुष भगवान ने ये सारी सृष्टि बनाई है, हम सबको बनाया है, वही तो धर्म बना सकते हैं। इसीलिए कई लोग शास्त्रों की अवमानना करके अपने अपने नियम बनाते हैं, ये सोचकर कि हमारे लिए ये ठीक है, भक्ति का यही मार्ग है, भगवान को प्राप्त करने का यही मार्ग है। और इसीलिए ऐसे सभी लोगों को प्रभुपाद धूर्त या धोखेबाज कहा करते थे, क्योंकि ये धूर्तता है, धोखा है। हमें धर्म बनाने का अधिकार ही नहीं है, क्षमता ही नहीं है, हमें तो केवल पालन करना है जो भगवान ने बता दिया, जो शास्त्रों में वर्णित है। और शास्त्र क्या है? भगवान की वाणी। तो जो शास्त्र में वर्णित है, जो भगवान ने धर्म को स्थापित किया, उस मार्ग को प्रहलाद महाराज कहते हैं सबसे श्रेष्ठ मार्ग है मुक्ति प्राप्त करने का। अन्य कोई भी मार्ग आपको मुक्ति तक नहीं ले जा सकता, भगवान ने जो बताया वही। तो इसीलिए भक्ति अपने मन से नहीं की जाती, शास्त्रों के आधार पर की जाती है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रम विधिम विना एकांत की हरेर भक्ति उत्पात एव कल्पते। रूप गोस्वामी समझाते हैं कि अगर आप हरि की ही भक्ति कर रहे हो, भगवान की भक्ति कर रहे हो, लेकिन श्रुति स्मृति पुराण आदि शास्त्रों के आधार पर नहीं,
बिना उनके उत्पात एव कल्पते। आपके जीवन में उत्पात होगा, समाज में उत्पात होगा। और यही आजकल कलयुग में ऐसे जो धूर्त गुरु हैं, जो अपने आप को भगवान घोषित करते हैं या अपने ही धर्म को स्थापित करते हैं, बनाते हैं, वे सारे के सारे उत्पात अपने जीवन में तो लाते ही हैं, कई मासूम लोगों के जीवन में उत्पात ले आते हैं, उनके भक्ति के जीवन को समाप्त कर देते हैं। ये पूतना की तरह है। पूतना बच्चे को पनपने से पहले ही मार डाला करती थी, छोटे बच्चों को मारने में वो दक्ष थी। तो इसी तरह ये जो गुरु हैं, जो अपने आप को या तो भगवान कहते हैं या अपने हिसाब से धर्म का पालन करते हैं, एक नया कोई मार्ग निकालते हैं। कलयुग में लोगों को इसकी आदत है कि आप उनको कुछ कहिए कि नया है तो लोग पालन करना शुरू करते हैं कि नया कुछ चीज है, ये पुरानी बात वही आप कह रहे हो, कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण की भक्ति करो, ये सब पुराना हो गया, कुछ नया बताइए। तो नई चीज कोई देता है तो लोग पालन करने लगते, ये कलयुग का लक्षण है। अन्य युगों में ऐसा नहीं था, अन्य युगों में जो कहा गया है वही पालन किया जाता था, जो आचार्यों ने, जो साधुओं ने सब बनाकर रखा है उसको बताया जाता था, अर्थात उन्होंने जो मार्ग दिए भगवान के द्वारा दिए गए मार्ग को। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इस कलयुग में इतने सारे तथाकथित गुरु हैं, पंथ हैं और अन्य संस्थाएं हैं जिनका कोई संपर्क किसी परंपरा से नहीं, किसी संप्रदाय से नहीं, वे किसी प्रकार के पथ का, शास्त्रिक पथ, शास्त्रीय पथ का पालन नहीं करते, लेकिन थोड़ा बहुत प्रसिद्ध होते हैं। तो ऐसे संस्थाएं, ऐसे लोग जो अपने ही नियम को बनाते हैं, थोड़े समय के लिए प्रसिद्ध होते हैं, फिर समाप्त, कोई उनका नाम लेने वाला नहीं रहता। लेकिन जिस संस्था का आधार शास्त्र है, जो संप्रदाय से जुड़ी हुई है और उस संप्रदाय के नियमों का कड़ाई से पालन करती है, शुद्धता को बनाए रखती है, परंपरा के निर्देशों को पालन करके, वो संस्था सदैव बनी रहती है। क्योंकि जब हम शास्त्रों के बताए हुए नियमों पर चलते हैं, आचार्यों ने उन्हीं शास्त्रों के नियमों को कैसे पालन करना है, ये जो हमें सिद्धांत दिए हैं, जब हम उन सिद्धांतों पर बने रहते हैं, तो हमारे जीवन में, संस्था में और समाज में शुद्धता रहती है। शुद्धता अपने बल पर नहीं आती है, शुद्धता आचार्यों का अनुगमन करने से आती है। शुद्धता तब आती है जब हम परंपरा के नियमों को वैसे ही बनाए रखते हैं, क्योंकि भगवान ने शुद्ध नियम दिए, आचार्यों ने उन शुद्ध नियमों को स्वीकार करके आगे हमें दिया, अगर हम वही नियम का पालन करते रहेंगे तो शुद्धता स्वतः बनी रहेगी। तो इसीलिए अनिवार्य है, प्रहलाद महाराज बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं कि एक ही मार्ग है मुक्ति का, मुक्ति अर्थात सच्ची मुक्ति का, भगवान की प्राप्ति का एक ही मार्ग है, और वो जो स्वयं भगवान ने बताया। इसीलिए हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति में आकर भी हम अपने अपने नियमों को पालन ना करें। कभी कभी ऐसा होता है, व्यवहारिक उदाहरण में हम लोग देखते हैं कि जैसे आचार्यों ने बहुत महत्वपूर्ण भजनों को लिखा हुआ है जिनमें उन्होंने भक्ति के सार को दिया है, सारे शास्त्रों के सार को छोटे छोटे भजनों में, साधारण भाषा में उन्होंने दे दिया। तो भक्ति का मार्ग क्या है, हम इन भजनों को दोहराए। लेकिन कभी कभी हमारे मन में बड़े और दूसरे जो इधर उधर के भजन होते हैं, जो ना किसी आचार्य ने लिखे हैं, ना उनका कोई संप्रदाय है, ना उनमें कोई भक्ति है, ऐसे ही इधर उधर के भजन, वो हमें बड़े अच्छे लगने लगते हैं। श्याम चूड़ी बेचने आया, राधा ढूंढ रही, किसी ने मेरा श्याम देखा, इत्यादि, है ना। तो बड़े कानों को अच्छे लगते हैं, अच्छे म्यूजिक के साथ थोड़ा बढ़िया लगता है कि गा लेना चाहिए। और यहां भजन है वो, भूलिया तुम्हारे संसारे आशी पे ना नव्यथा बोले, ये सब क्या है, थोड़ा वो सब होना चाहिए कुछ, हा? राधा ढूंढ रही। तो ये हमारी भक्ति का ये पथ भ्रष्ट होना है, ये है कि अपने खुद के मार्ग बना लेना। आचार्यों ने स्थापित किए हैं, भजन दिए हैं, शास्त्र दिए हैं, सब कुछ दिया है। इस संस्था में प्रभुपाद ने क्या नहीं दिया? आपको क्या खाना है प्रभुपाद ने दे दिया, आपको क्या पहनना है प्रभुपाद ने दे दिया, आपको कैसे रहना है प्रभुपाद ने दे दिया, भक्ति कैसे करनी है दे दिया, भगवान की सेवा कैसे करनी है दे दिया, भोग कैसे लगाना, सब कुछ तो दे दिया, बचा क्या? लेकिन फिर भी अगर हम दूसरे किसी मार्ग को ढूंढने का प्रयास करें ये सोचकर कि शायद प्रभुपाद भूल गए होंगे, हमें ये बताना कि हम राधा ढूंढ रहे, किसी ने मेरा श्याम देखा, ये वो भजन प्रभुपाद को याद नहीं आया होगा, यस ऐसे कुछ नहीं। प्रभुपाद ने सब दिया, पूर्ण है वो, कोई उसमें कमी नहीं है, इसीलिए बस उसका पालन करते रहना, शुद्धता बनी रहेगी। तो ये हमें बड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात उन्होंने प्रारंभ की कि हमें जैसे भगवान ने बताया है वैसे भक्ति करनी है। कभी कभी लगता है कि हम कहीं पर जाते हैं, कोई एक अलग प्रकार का लोग होते हैं तो वो लोग को ये सब अच्छा नहीं लगता है कि आत्मा की बात आप करते हो, ये भगवान का नाम लो, भक्ति करो, कुछ और बताओ, कुछ अच्छा भजन सुनाओ, कुछ लीला सुनाओ, क्या हुआ, कैसे राधा और कृष्ण की अंतरंगा लीला हुई। प्रभुपाद से लोग कहते थे स्वामी जी रासलीला बताइए, रासलीला सुनाइए। एक जगह प्रभुपाद कहते हैं मैं योग्य नहीं हूं, आप लोग हो सकते हैं सुनने के लिए योग्य हो रासलीला, मैं बोलने के लिए योग्य नहीं। तो ये सब चीजें ज्यादातर यही होता है कि हमें रासलीला सुननी है, क्यों? मन दूषित है, उसमें आनंद आता है, लेकिन मन के दूषण को निकालने के लिए हमें कृष्ण की हर लीला को सुनना, चाहे वो असुरों का वध हो, युद्ध की लीला हो, सारी लीलाओं को हमें सुनना। तो ये मार्ग है। तो ऐसे बताकर फिर प्रहलाद महाराज अब उस मार्ग को कह रहे हैं, संक्षेप में वो मार्ग देते हैं, पांच उन्होंने लक्षण बता दिए, उन्हीं में सारा मार्ग दे दिया उन्होंने कि कैसे भक्ति करनी है। तो उन्होंने बताया जैसे भगवान ने कहा, तो क्या कहा, कैसे करनी चाहिए, वो प्रारंभ करते हैं। गुरु शुश्रूषया, गुरु की सेवा करना, तो ये बताते हैं वो। तो कहते हैं गुरु की सेवा करनी चाहिए, पहला वो बात बताते हैं कि कैसे हमें गुरु को स्वीकारना चाहिए और उनकी सेवा करनी चाहिए। रूप गोस्वामी भी भक्ति रसामृत सिंधु में जब भक्ति के अंगों का वर्णन करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहला अंग कहते हैं गुरु को स्वीकारना, फिर उनसे दीक्षा लेना, उनके बताए हुए मार्ग पर, पूर्ववर्ती आचार्यों के मार्ग पर चलना, उनकी सेवा करना, उनसे प्रश्न पूछना, ये पहले पांच अंग बताए हैं भक्ति के रूप गोस्वामी ने। और अगर पहले तीन अंग नहीं हुए, गुरु को स्वीकार नहीं किया, उनके उनके मार्ग पर नहीं चले, निर्देशों पर नहीं चले, तो बाकी भक्ति के कोई अंग पालन नहीं हो सकते। इसीलिए गुरु को स्वीकारना बहुत महत्वपूर्ण है। और गुरु को स्वीकारने से क्या होता है, गुरु की सेवा से क्या होता है? गुरु की सेवा से ये एक रहस्य है भक्ति में प्रगति का। अगर कोई भक्त भक्ति में प्रगति तीव्रता से करना चाहता है उसको केवल अपने गुरु की सेवा करनी चाहिए, बस, और कुछ नहीं चाहिए जीवन में। ये रहस्य है भक्ति में प्रगति का। तो ऐसा करना चाहिए, अगर कोई गुरु की सेवा करता है, हृदय में बहुत सारे अनर्थ हैं, पापी है व्यक्ति, लेकिन अगर गुरु की सेवा बड़े अच्छी तरह कर रहा है और गुरु की कृपा उस पर हुई तो वो व्यक्ति मुक्त हो सकता है, शुद्ध हो सकता है। इसीलिए एक ही मार्ग है, हमें भक्ति में आने के बाद कृष्णदास बनने का प्रयास नहीं करना चाहिए, हमें गुरुदास बनना चाहिए। कभी कभी हम लोग सीधे कृष्णदास बनना चाहते हैं, अब तो बहुत समय हो गया, अब सीधे कृष्ण से संपर्क नहीं, हमें गुरुदास बनना। तो गुरु की सेवा ये पहली चीज, गुरु को स्वीकारना, उनकी सेवा करना। और प्रहलाद महाराज कहते हैं अपनी जो भी संपत्ति है, संपत्ति मतलब केवल धन नहीं, जो कुछ भी आपका संचय किया हुआ है वो सब गुरु को अर्पण करना। अर्थात धन है वो तो ठीक है, धन तो अर्पण कर ही देना चाहिए, लेकिन और भी बहुत कुछ चीजें हम लोग संचय कर रखते हैं, संभाल कर रखते हैं, सब गुरु को अर्पण कर देना, कुछ नहीं रखना, अपना समय देना, अपने कार्यों को अर्पण करना, ये हमें गुरु को करना चाहिए। तो प्रहलाद महाराज जी तीसरी बात कहते, पहले के गुरु को स्वीकार करें, दूसरी उनकी सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि गुरु की सेवा अनिवार्य है, उनकी सुविधा का ध्यान रखना चाहिए भक्त को। प्रभुपाद कहते कैसे, उनके लिए कपड़ों को रखना, उनके भोजन को रखना, उनके अन्य कार्यों को, ये सब सेवा होनी चाहिए गुरु की, ये अनिवार्य है। और अगर हम गुरु की सीधे सेवा नहीं कर सकते तो हमें उनके निर्देशों की सेवा करनी चाहिए, वपु और वाणी, तो हमें उनके निर्देशों की सेवा करनी चाहिए, जो उन्होंने उपदेश दिए हैं उनकी सेवा करके एक भक्त सदैव अपने गुरु के साथ रह सकता है। प्रभुपाद कहते हैं एक स्थान पर कि मैं अपने गुरु से कभी अलग नहीं हुआ, क्योंकि वे सदैव मेरे साथ हैं उनके निर्देशों के द्वारा। तो जो उपदेश, जो निर्देश भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने श्रील प्रभुपाद को दिए थे, उनके द्वारा वो सदैव उनका संग करते रहे। तो इसलिए ये आवश्यक है कि हम लोग गुरु के निर्देशों को सदैव याद रखें। तो गुरु की सेवा, चाहे वो जब हो तब भी उनकी सेवा बड़ी करनी चाहिए। प्रभुपाद तात्पर्य में बड़े विस्तार से लिखते हैं, हम उसको थोड़ा सा पढ़ना चाहेंगे कि प्रभुपाद लिखते हैं कैसे गुरु की सेवा होनी चाहिए। और फिर हाँ, यहां प्रभुपाद लिखते हैं, गुरु शुश्रूषा शब्दों का अर्थ है कि वे स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके, जैसे स्नान करते, वस्त्र बदलते, सोते, खाते समय सहायता पहुंचाकर उनकी सेवा करें। यह गुरु शुश्रूषम कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ हो, जो कुछ भी हो, उसे गुरु को समर्पित कर दे, प्राण अर्थे धिया वाचा। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन, संपत्ति, बुद्धि तथा वाणी होती है और इन सबों को गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गुरु को सब कुछ कर्तव्य के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, किंतु यह भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बनावटी ढंग से नहीं, अपितु हृदय से की जानी चाहिए। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे गुरु की सेवा, वपु की सेवा कर सकते हैं, और साथ साथ उनकी वाणी की भी सेवा। हमें आगे वो समझाते हैं कि अगर वो ना हो तो हम उनकी वाणी की भी सेवा कर सकते हैं। तो ये पहली चीज प्रहलाद महाराज बताते हैं कि गुरु को सेवा करनी चाहिए, उनको अपना सब कुछ समर्पण करना चाहिए। तो गुरु को स्वीकार करें, उनकी सेवा करें, जो कुछ उनको अपने उनको समर्पण करें। और चौथी चीज बताते हैं कि भक्तों के संग में भगवान की भक्ति की प्रक्रिया को करें, जैसे श्रवण इत्यादि, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का गुणगान करना, ये भक्तों के संग में होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भक्तों के संग से शक्ति प्राप्त होती है। जब हमारी शक्ति क्षीण होने लगती है भक्ति में, जब हमें रुचि कम होने लगती है भक्ति में, हमारा उत्साह कम होने लगता है भक्ति में, तब भक्त हैं जो हमें पुनः उस भक्ति में उत्साह दिलाते हैं, रुचि दिलाते हैं। इसीलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। एकांत की हरेर भक्ति उत्पादे व कल्पते, अकेले भक्ति नहीं होती। एकाखी अमार ना ही पाया बल, हरि नाम संकीर्तन है। अकेले हम नहीं कर सकते। आचार्य लिखते हैं, बड़े बड़े आचार्यों ने कहा, सवाल ही पैदा नहीं होता कि अकेले हम भक्ति कर ले। एकाखी अमार ना ही पाया बल। तो इसीलिए जितने भी हम आचार्यों के भजन देखें, उन सब ने प्रार्थना की भक्तों का संग मिले, भक्तों के संग में रहूं, बस यही प्रार्थना। भागवत की प्रार्थनाओं को आप देखिए, सबने यही कहा, बस भक्तों का संग मिले, आपके भक्तों के संग में रहूं, इतनी प्रार्थना है। तो इसीलिए भक्तों के संग में भगवान की भक्ति की जाए, अकेले नहीं। हम सब बड़े भाग्यवान हैं कि हमें भगवान के भक्तों का संग मिलता है। प्रभुपाद ने ये संस्था बनाई, अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। प्रभुपाद इसकी तुलना कई ऐसी संस्थाओं से करते हैं, जैसे हर स्थान में, हर शहर में चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स मतलब वो एक ऐसा स्थान होता है जहां उस राज्य के या उस स्थान के जितने व्यापारी हैं वो सब इकट्ठा आते हैं, और वो व्यापारी इकट्ठा आकर क्या करते हैं, कैसे व्यापार को बढ़ाना है वो बातचीत करते हैं। महीने में, दो महीने में उनकी एक मीटिंग होती है, सब साथ में आते हैं, आपस में मिलते हैं और चर्चा करते हैं कि कैसे व्यापार बढ़ा सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं कि जो इस्कॉन संस्था है ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरह है, कि सब भक्त साथ में आए और ये चर्चा करें कि कैसे हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। हमारा व्यापार क्या है? कृष्ण भक्ति। तो जब साथ में आए तो चर्चा होनी चाहिए, इसीलिए भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। भक्तों का संग सही दृष्टि से करना चाहिए, सही भाव से करना चाहिए, मान प्रतिष्ठा के लिए नहीं, कुछ पाने के लिए नहीं। कभी कभी हम लोग साथ में रहते हैं तो बहुत मनमुटाव हो जाता है, व्यक्ति को सस्ता ले लेते हैं, हम सोचने लगते हैं। जब भक्तों की बात की जाती है तो वो बड़े बड़े आचार्य, प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, शिल प्रभुपाद, ये जो हमारे साथ में रह रहे इसके लिए नहीं, ये तो अभी अभी आया है, मुझसे मेरे बाद में आया, मेरे साथ में आया, मेरे से 2 साल पहले आया है, बस इतना ही नहीं। भक्तों का संग इसीलिए कहा गया कि इन्हीं भक्तों के संग से हमें शक्ति मिले। प्रभुपाद के आंदोलन में है, जब कर रहे हैं, नियम का पालन कर रहे हैं, तो उनका जब हम संग करते हैं, उनसे जब लाभ लेते हैं तो भक्ति में आगे बढ़ते हैं। इसे प्रहलाद महाराज कहते हैं भक्तों के संग में करनी चाहिए। तो भक्तों का संग कैसे लेना चाहिए? सही भाव में। भगवान कहते हैं भगवत गीता में, मच्चित्ता मतगत प्राण बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। कि भक्तों का संग कैसे करना चाहिए? भगवान कहते हैं कि जो ऐसे भक्त जिनका चित्त मुझ में लगा है, मच्चित्ता मतगत प्राण, जिन्होंने मुझे अपना प्राण माना है, ऐसे भक्तों का संग कैसे करना चाहिए? कथयंतश्च माम नित्यम, साथ में आकर मेरी कथा करनी चाहिए। कथयंतश्च माम नित्यम, स्पष्ट कहा श्री कृष्ण, और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, मेरी कथा करो। तो जब हम लोग ये भागवत के श्लोकों को, भागवत क्लास को सुन रहे हैं, आप लोगों से प्रार्थना है कि इसको एक ऐसी क्लास ना माना करिए कि बस अब आकर बैठ गए हैं, समय समाप्त हो जाए, थोड़ा सो जाए, थोड़ा खाएं, आगे बहुत सारा कुछ करना है, व्यापार करना है, सेवा करनी, बहुत महत्वपूर्ण काम है, ये सब कब खत्म हो। इसको ये मानिए रोज कि आज मैंने भागवत से क्या सीखा क्लास से। अगर ऐसा आपका भाव होगा तो निश्चित ये भागवत आपसे चर्चा करेगी, आपसे बात करेगी। तो इसीलिए भागवतम को सुनते समय हमें ये सोचना चाहिए कि आज मेरे जीवन में उतारने के लिए क्या मिला भागवतम क्लास से, ये महत्वपूर्ण है। श्लोक अच्छा बोला, प्रभु जी ने प्रवचन अच्छा दिया, ये सब ठीक है, वो हमने उसके लिए उसमें से क्या लिया? आज मुझे भागवत क्लास से अपने जीवन में उतारने के लिए क्या मिला, ये हमें भागवत से लेके जाना चाहिए। तब तो भागवत सुनने का लाभ है। वैसे भी लाभ है, आप आंखें बंद करके भी बैठोगे तो आत्मा को तो लाभ होता है, शरीर को ना हो, लेकिन पूरा लाभ नहीं है, इसलिए सीखिए। तो इसी तरह ये जो भक्ति के, जैसे हमने शुरुआत में भी बताया काफी चीजें कि हमें भक्ति में अपने मन से भक्ति नहीं करनी चाहिए, तो देखिए कि कहीं मैं मन से भक्ति तो नहीं कर रहा, और भक्तों का संग कैसे कर रहा हूं, ये भी महत्वपूर्ण है। क्या भक्तों के संग में आके मैं अपनी मान प्रतिष्ठा को स्थापित करने के लिए लगा हुआ हूं कि मैं इसको नीचा दिखाऊं, मैं अपने आप को श्रेष्ठ, मैं बहुत सेवा करूं, इतनी सेवा करूं कि लोग बोले क्या सेवा करता है, बाकी सारे भक्तों से श्रेष्ठ है। किस भाव में, किस लिए मैं सेवा कर रहा हूं, किस लिए भक्तों के संग में हूं? कथयंतश्च माम नित्यम, क्या मैंने भक्तों के संग में आके कथा की, भगवान की बातें की, भगवान की भक्ति का विषय पूछा, अपनी साधना का वर्णन किया, अपने अंदर जो कमियां हैं उसको कैसे दूर करना है इसकी चर्चा की, या केवल आए थोड़ा बहुत राजनीति की बात की, भारत में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, कहां कितने लोग मरे, प्रसाद लिया और हम चले गए? कोई लाभ नहीं भक्तों के संग का। कभी कभी लोग सन्यासियों के पास आते हैं केवल अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तकलीफों को बात करने के लिए। आजकल ये नियम हो गया है, सन्यासी आए तो बस उनके पास जाइए, महाराज ये तकलीफ है, हमारा परिवार में ये है, हमारा वो है, क्या करें, तो सारी तकलीफें सन्यासी से ही बात करना। कोई पूछता नहीं महाराज भक्ति में तकलीफ हो रही है, जप नहीं हो रहा है, कैसे किया जाए, आप बताइए, कृपा कीजिए, जप अच्छा हो, ध्यान लगे, पढ़ने में ध्यान नहीं लग रहा, क्या करें, इसको आप बताइए। तो इसीलिए भक्तों का संग ऐसा होना चाहिए कि हम भक्तों के संग में कथयन्तश्च माम नित्यम, भगवान की भक्ति, भगवान के प्रचार, इसकी चर्चा कर सके। कैसे प्रचार को बढ़ाना है, कैसे अपनी भक्ति को बढ़ाना है, इसको हमें चर्चा करनी चाहिए। तो ये भक्तों का संग। और पांचवी चीज प्रहलाद महाराज कहते हैं, सतत भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान का स्मरण करें, भक्तों का संग करें, गुरु को सब कुछ अर्पण करें, गुरु की सेवा करें, गुरु को स्वीकार करें। पांच चीजें बताते हैं कि ये भक्ति का मार्ग है, ऐसी भक्ति करनी चाहिए। और उस भक्ति का लाभ क्या होता है, फिर वो बताते हैं आगे कि जब कोई इस भक्ति को ऐसे करता है तो जो भी उसके हृदय में अनर्थ हैं वो सारे दूर हो जाते हैं। वैसे ये जो श्लोक हैं प्रहलाद महाराज के, ये भक्ति की स्थितियों का वर्णन है एक के बाद एक। आदो श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति इत्यादि, आगे रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो इन सारे चीजों को एक एक श्लोक में प्रहलाद महाराज ने वर्णन किया। तो जब अनर्थ निवृत्ति अर्थात हृदय से जब वो गुरु का संग करते हैं, भक्त का संग होता है, साधु संग होता है, तो भजन क्रिया, भजन क्रिया क्या है, भक्तों के संग में आकर भगवान की कथा को सुनना, भगवान के नाम को लेना, अनर्थ निवृत्ति। फिर हमारे हृदय से सारी जितने मल हैं, काम, क्रोध, लोभ, भावनाएं, द्वेष, बहुत बड़ा बनने की इच्छा, वो सब चली जाती है। फिर केवल कृष्ण की प्रसन्नता का भाव रह जाता है, अनर्थ निवृत्ति। और उसके बाद व्यक्ति भक्ति में स्थिर हो जाता है, उसको लगता है कि हाँ यही चीज करनी चाहिए। और फिर प्रहलाद महाराज कहते फिर क्या होता है कि वो कभी भी भगवान की भक्ति किए बिना रह नहीं सकता, उसकी रुचि इतनी बढ़ जाती है, उसको रति, रति शब्द इस्तेमाल करते हैं प्रहलाद महाराज, की रुचि इतनी बढ़ जाती है कि वो भगवान की भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। और फिर आगे वर्णन करते हैं कि फिर क्या होता है, जब उसकी आसक्ति हो जाती है तो उन भावों को प्रकट करने लगता है, कभी कभी पागल हो जाता है, पागलों की तरह चिल्लाता है, कभी एकदम स्तब्ध हो जाता है। ये भाव किस तरह का वर्णन वो करते हैं कि जो भक्त तो होता है वो कभी जोर जोर से भगवान का नाम चिल्लाता है, उसको कुछ पता नहीं रहता कि क्या वो बाहरी चेतना खो बैठता है, कभी हंसता है, कभी रोता है। प्रहलाद महाराज इनका वर्णन करते हैं। प्रहलाद महाराज ने इन सारे लक्षणों को प्रकट भी किया था। प्रहलाद भी ऐसे ही थे, कभी अचानक जोर जोर से हंसने लगते थे, कभी भगवान का नाम लेते थे, कभी स्तब्ध बैठे रहते थे, लोग सोचते थे पता नहीं क्या हुआ। तो ये भाव के लक्षण उन्होंने वर्णन किया। फिर वो कहते हैं कि जब कोई इस अवस्था को प्राप्त करता है तब सच्ची दृष्टि में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करता, अर्थात प्रेमावस्था, जहां भगवान के चरण कमलों को वो प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी अवस्थाओं का वो वर्णन करते हैं एक एक श्लोक में। और फिर कहते हैं कि ये जो जीव है जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंसा रहता है, जब तक भक्ति नहीं करेगा इसके बाहर नहीं आएगा। और फिर इस भौतिक जगत का वर्णन करते हैं कि कैसे यहां पर इतने कष्ट हैं, ये जो शरीर है लोग शरीर में फंसे रहते हैं, सदैव इंद्रिय तृप्ति में फंसे रहते हैं, ये सोचकर कि हमें बड़ा आनंद मिलेगा। प्रहलाद महाराज कहते हैं कि क्या आनंद मिलेगा, ये सब थोड़े समय के लिए है। अगर कोई बहुत अच्छे कार्य करके स्वर्ग भी पहुंच जाता है तो वो स्वर्ग भी थोड़े समय के लिए, शाश्वत नहीं, ये तो अशाश्वत चीजें हैं। फिर स्वर्ग की बात तो छोड़, फिर आप अपने घर की बात करते हो, पत्नी की बात करते हो, बच्चों की बात करते हो। क्यों व्यक्ति इतना आसक्त है? प्रहलाद महाराज प्रश्न कर रहे हैं, इंद्रिय तृप्ति में क्यों इतना आसक्त है? क्यों नहीं समझता कि ये थोड़े समय के लिए है? क्यों हमेशा सुखी रहना चाहता है इस जगत में? प्रहलाद महाराज कहते हैं, व्यक्ति मूर्ख है जब वो प्रारंभ करता है योजना बनाना अपने सुख की, तब से उसका दुख प्रारंभ हो जाता है, उसी समय से उसका दुख प्रारंभ हो जाता है, लेकिन वो जान नहीं पाता। मूर्ख है, प्रयास कर रहा है, योजना बना रहा है अपने सुखी होने की, लेकिन जिस दिन से योजना बनानी शुरू की उस दिन से उसकी चिंता बढ़ जाती है, दुखी हो जाता है। तो क्या लाभ है ऐसे सुख की प्राप्ति का, और क्या लाभ है ऐसे शरीर पर ध्यान देने का? उस शरीर है क्या? प्रहलाद महाराज प्रश्न करते हैं, शरीर किसकी संपत्ति है? प्रभुपाद समझाते हैं कि क्या होता है शरीर में, या तो फिर वो अग्नि को हो जाता है, या कीड़ों को चला जाता है, पृथ्वी को चला जाता है, संपत्ति किसकी है? यही प्रश्न नारद मुनि ने दसवें स्कंद में नलकुवर और मणिग्रीव की कथा के समय कहेंगे। ये किसकी संपत्ति है शरीर, जो इतना व्यक्ति शरीर से आसक्त है? तो बहुत नारद मुनि उदाहरण देते कि माँ बाप की संपत्ति है, या जो तुम्हारे तुम्हें पैसा देता है, जिसके यहां तुम नौकरी करते हो उसकी संपत्ति है, कीड़े मकोड़ों की संपत्ति है, कुत्तों की संपत्ति है, अग्नि की संपत्ति है, पुत्र की संपत्ति, किसकी संपत्ति है ये शरीर? प्रहलाद महाराज भी ये पूछे, जिस शरीर से इतनी आसक्ति, ये तो जानो किसकी संपत्ति है, ये क्या होने वाला है मरने के बाद? खत्म, कीड़े मकोड़े खा जाएंगे या अग्नि जलाकर समाप्त कर देगी, बचेगा क्या? फिर उस शरीर के लिए, उस शरीर से संबंधित लोगों के लिए इतना क्यों कष्ट करना? प्रहलाद महाराज अपने दैत्य मित्रों को बता रहे हैं कि इसीलिए ये जो अलग अलग शरीर मिलते रहते हैं, ये अलग अलग कर्मों का फल है। बहुत जन्मों से हम लोग ये कर्म करते आ रहे हैं, और इसीलिए शरीर को, किसी को असुर का शरीर मिलता है, किसी को देवता का शरीर मिलता है। लेकिन अगर कोई ब्राह्मण हो, कोई देवता हो, कुछ भी हो, थोड़े समय के लिए शरीर जाने वाला है। इसीलिए वो कहते हैं कि हमें भगवान की भक्ति कर लेनी चाहिए, क्योंकि भगवान सबकी आत्मा है। और जो व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है, वो कहते हैं चाहे ब्राह्मण हो, चाहे चंडाल हो, स्त्री हो, कोई भी हो, प्रहलाद महाराज कहते हैं वो सबसे शुभ कार्य है, और वो कोई भी कर सकता, भक्ति ही शुभ कार्य है। और क्या प्रसन्न करता है भगवान को, कैसे भक्ति कर सकते हैं? प्रहलाद महाराज कहते हैं आपका बड़ा अच्छा ब्राह्मण होना, देवता होना, ये भगवान को प्रसन्न नहीं करता। आपने बड़ा दान दे दिया, ये भगवान को प्रसन्न नहीं करता। आप बहुत तपस्या कर रहे हो, भगवान को प्रसन्न नहीं करता। तो आप कुछ भी करो, तपस्या करो, दान दो इत्यादि, ये सब भगवान को प्रसन्न नहीं करता। तो क्या प्रसन्न करता है भगवान को? अनन्य भक्ति। अनन्य भक्ति प्रसन्न करती है। तो आप कोई भी हो, किसी भी स्थान में हो, अगर आप भगवान की अनन्य, अनन्य मतलब किसी अन्य को स्वामी नहीं मानना, एक ही स्वामी है श्री कृष्ण, एक ही मेरे रक्षक हैं श्री कृष्ण, तुम ही तो रक्षक आर पालक आमार, आप ही रक्षक हैं, आप ही पालक हैं, आप ही सब कुछ प्रदान करने वाले हैं। अनन्य भक्ति, किसी और पर आश्रित नहीं रहना, ना अपने धन पर, ना अपने बल पर, ना अपनी भौतिक स्थिति पर, ये अनन्य भक्ति है। केवल कृष्ण पर आश्रित रहना, ये अनन्य भक्ति है, ऐसी भक्ति कृष्ण को प्रसन्न करती है। इसीलिए हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हम बहुत अच्छे ब्रह्मचारी हैं, हम बहुत बड़े सन्यासी हैं, हम बहुत अच्छे गृहस्थ नियम का पालन करते हैं, हम ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, शूद्र हैं, कोई अहंकार नहीं, अपनी स्थिति का कोई अहंकार नहीं। अनन्य भक्ति, हम कृष्ण पर आश्रित हैं, हमारी रक्षा केवल कृष्ण कर सकते हैं, हमारा पालन केवल कृष्ण कर सकते हैं, दूसरा कोई आश्रय देने वाला नहीं है, बाकी सब कृष्ण पर आश्रित हैं, इसे अनन्य भक्ति कहते हैं। इस चीज का विश्वास होना, मेरी संपत्ति, मेरा बल, मेरा सौंदर्य, मेरा ज्ञान, जो भी है, ये सब कृष्ण की देन है, ये अनन्य भक्ति है। अगर मेरे अंदर कोई कला है, मेरे अंदर कोई गुण है, कृष्ण के कारण। कृष्ण गुणों की खान है, उनका एक अंश मात्र वो जीव में प्रकट कराते हैं। इस चीज को जानना, ये अनन्य भक्ति है। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि कृष्ण केवल अनन्य भक्ति से प्रसन्न होते हैं, अन्य और कोई चीज से नहीं। तो हां, ब्रह्मचारी होना, सन्यासी होना अच्छी बात है, लेकिन भगवान की भक्ति में, अनन्य भक्ति करते हुए अगर हम भगवान की, फिर हम ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, गृहस्थ मान कर बहुत अच्छा, लेकिन अगर भक्ति नहीं है तो फिर क्या है, केवल मृत शरीर को सजाना। अगर भक्ति ही नस्य, प्रभुपाद उस प्रवचन में भी सोमवार को समझा रहे थे, क्या फायदा फिर ऐसे भक्ति का, कि जहां पर क्या फायदा ऐसे कार्यों का जहां भक्ति नहीं है। तो इसीलिए प्रहलाद महाराज समझाते हैं कि हमें अनन्य भक्ति करनी चाहिए। और फिर ये जो अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, एतवानेव लोकेस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः, बताते हैं कि एक ही जीवन का उद्देश्य, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अपने मित्रों को, अपनी शिक्षाओं को समाप्त करते हुए आखिरी चीज वो बताते हैं, सार देते हैं कि ये जान लो कि जीवन का उद्देश्य क्या है। और वो कहते हैं जीवन का उद्देश्य केवल दो ही चीजें हैं, भगवान की सेवा और भगवान को सर्वत्र देखना, बस। ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। अगर कोई व्यक्ति भगवान को सर्वत्र देख रहा है तो उसका हृदय कभी दूषित नहीं होगा। हम लोग पाप क्यों करते हैं, ये सोच के कि कोई हमें देख नहीं रहा। हम गलत कार्य क्यों करते हैं, ये सोच के कि कोई जानता नहीं है। लेकिन अगर हम सर्वत्र भगवान को देख रहे हैं, जिन भगवान का नाम मात्र शुद्ध कर देता है, लेकिन अगर जो सब जगह भगवान को देखने का अभ्यास कर ले, वो व्यक्ति तो सदैव शुद्ध होगा। तो इसीलिए सर्वत्र भगवान को देखने का प्रयास करना। भगवद्गीता के कई अध्यायों में भगवान प्रारंभिक अवस्था देते हैं, कैसे मुझे देखना प्रारंभ करो। रसो हम अप सुकौमते प्रभास्मी शशि सूर्य यो, आप सूर्य की रोशनी को देख रहे हैं, ये जानिए कि ये शक्ति भगवान से आती है। जल ले रहे हैं, स्वाद आए तो उसको कहिए कि ये भगवान है, कृष्ण है, भगवान ने स्वयं कहा। तो कृष्ण को स्मरण करने के कितने उपाय उन्होंने दिए, कितना कुछ वर्णन करते हैं भगवान, ये मैं हूं, ये मैं हूं, ये मैं हूं। बस उसको पढ़ना, उसकी तरह देखते रहना, पर्वतों को देखें, पेड़ों को देखें, जल को देखें, नदी को देखें, जहां देखें हमें कृष्ण का स्मरण होना चाहिए। ये कृष्ण भावना मृत है। एक बार एक वैज्ञानिक भारत में आए, कई मंदिरों में गए, तिरुपति में गए, वहां भगवान के सामने खड़े थे और देख कर कहने लगे कि यहां मुझे कोई सकारात्मक शक्ति का अनुभव हो रहा है, आई एम एक्सपीरियंसिंग अ पॉजिटिव एनर्जी हियर, भगवान के सामने। और प्रभुपाद एक समय नायगरा फॉल्स देखने के लिए गए, बड़े प्रसिद्ध फॉल्स हैं, पानी के गिरता है पानी। तो जब प्रभुपाद ने देखा तो प्रभुपाद ने कहा कि सी कृष्णस एनर्जी। तो एक भक्त जब कुछ चीजों को देखता है तो उसको कृष्ण का स्मरण आता है, कृष्ण की शक्ति को देखते हुए कृष्ण का स्मरण करता, और मूर्ख व्यक्ति कृष्ण के सामने खड़ा होकर भी किसी शक्ति का अनुभव करता, एक पॉजिटिव एनर्जी। तो इसीलिए आवश्यक है कि हम कृष्ण को सर्वत्र देखने का प्रयास करें, हर जीव में देखें, हर व्यक्ति में कृष्ण को देखने का प्रयास करें। उससे दो लाभ होंगे, एक हम कभी किसी के प्रति अपराध नहीं करेंगे, और दूसरा अपनी निम्न अवस्था को बनाए रखेंगे, मैं तो सबसे निम्न हूं। ये एक उत्तम भक्त के लक्षण है कि एक उत्तम भक्त जो होता है वो बाकी सबको भगवान के सेवक के रूप में देखता है, ये देखता है कि कैसे ये सेवा में लगा, और एक मैं हूं जो कुछ नहीं कर रहा। तो इसीलिए सर्वत्र भगवान को देखना और भगवान की सेवा करना यही एकमात्र एकवानेव एक ही जीवन का लक्ष्य है, जिसको प्रहलाद महाराज इस श्लोक में समझा रहे हैं।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो अगले अध्याय